ओम ब्रह्म सत्यम ग्रंथ समता प्रकाश में एक छोटा सा चैप्टर है शक्ति तत्व का निर्णय। इसमें महाराज जी ने दो चीजें समझाई हैं, संग शक्ति क्या होती है और असंग शक्ति क्या होती है। इसी संग शक्ति और असंग शक्ति को गीता के अंदर 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ करके कहा गया है। तो महाराज जी कह रहे हैं कर्ता कर्म कर्म फल यानी पांच तत्वों के मेल जोल से जो नाना प्रकार की सृष्टि प्रकट हो रही है इसको संग शक्ति यानी माया कहते हैं, और इन सब विकारों से निर्मल और सदैव काल एक रस रहने वाला परम तत्व अविनाशी स्वरूप जो आत्मा है उसी को असंग शक्ति यानी सर्व न्यारा और निराधार कहते हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक अपना ही विज्ञान समझ में नहीं आए तब तक ईश्वर को जानने की इच्छा या ईश्वर को जानने की आवश्यकता मनुष्य को महसूस नहीं होती। इसलिए शास्त्रों में ये सारा विवेचन किया जाता है, सारा विज्ञान लिखा जाता है। तो देखिए कि कर्ता कर्म और कर्म फल, कर्ता कर्म और कर्म फल ये कहां होते हैं? देह और संसार में होते हैं। मैं अपने आप को कर्ता समझता हूं और सुख प्राप्ति के लिए या इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करता हूं और उस कर्म के फल को देह के द्वारा प्राप्त करता हूं, यही मेरा जीवन है। लेकिन ये सारी की सारी जो कुछ भी मेरी क्रिया है वो कहते हैं ये संग शक्ति है यानी इसको माया कहते हैं। अब देखिए गीता में क्या कह रहे हैं वो, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है, हे अर्जुन यह शरीर क्षेत्र है ऐसे कहा जाता है। इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। कौन जानता है? उनको जानने वाले ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं। तो जो इस क्षेत्र को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो कहते हैं कौन कहते हैं कि उनको जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्र को यदि समझा जाए तो आप ऐसे समझिए जैसे कि खेत है। खेत में हम सब जानते हैं कि बीज बोया जाता है उससे फसल पैदा होती है। उसी प्रकार इस देह को वो क्षेत्र कह रहे हैं, इस संसार को भी वो क्षेत्र कह रहे हैं, इन दोनों को मिला के वो माया कह रहे हैं। तो इसको क्षेत्र क्यों कहा जाता है? ये भी खेत की तरह से क्यों है? क्योंकि इसमें भी जो हमारे कर्मों के संस्कार हैं मन के अंतर्गत वो बीज हैं। उन संस्कारों के अनुसार या उस बीज के अनुसार इस देह में कर्म रूपी अंकुर और कर्म फल रूपी फसल पैदा होती है। आप देखिए ना, हर व्यक्ति कर्म में लगा हुआ है और कर्म फल भोग रहा है, लेकिन वो एक गहरे कंफ्यूजन में है, एक गहरी अज्ञानता में जी रहा है कि वो अपने आप को क्षेत्र समझ रहा है, जबकि है कौन वो? वो कहते हैं कि हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है ऐसे कहा जाता है, इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। मैं हूं तो क्षेत्रज्ञ क्योंकि मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्षेत्र ही बना घूम रहा हूं क्योंकि मैं अपने आप को शरीर करके देखा, इसलिए वो आगे कहते हैं क्षेत्रज्ञम चा अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, और सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात सब शरीरों में जो जानने वाला है, मैं भी शरीर में हूं, मैं भी जानने वाला, मुझको पता है इस देह में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, मैं जानने वाला। लेकिन वो कह रहे हैं और सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे को ही जान। ये खास बात, जानता मैं भी हूं और जानते सत्पुरुष भी हैं, जानते गुरु भी हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ है अर्थात जो जीवात्मा है वो भी मेरे को ही जान। इसका सीधा सा मतलब हो गया, मैं खुद ईश्वर हूं, मैं खुद ईश्वर हूं। गीता इस पर मोहर लगा रही है, लेकिन मेरी गलती क्या हो रही है, मैं फंसा कहां हूं, उसके बारे में महाराज जी लिख रहे हैं। संग शक्ति यानी तत्वों के विकारों से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि महा अवगुणों को बुद्धि स्वीकार करके नित ही संकट में भयभीत रहती है और तुच्छ समय के अंदर ही शरीर की नाश को प्राप्त होती है और इस संसार से निराश ही जाती है। यह ही जीवन अंधकारमयी पशु समान है। मेरे बारे में ये गुरु वचन क्या कह रहा है कि मैं जो अपने आप को संग शक्ति से जोड़े बैठा हुआ हूं। बार बार हम ये विज्ञान सुनते हैं, ये देह और ये संसार ये पांच तत्वों की उपज है या पांच तत्वों से बना है और इन पांच तत्वों के पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हम सब जानते हैं ये अवगुण है, लेकिन हमने इन्हीं विकारों को अपना जीवन बना रखा है, जीने का उद्देश्य बना रखा है। सारी इच्छाएं जितनी भी हमारे अंदर पैदा होती हैं ये सब पांच विकार के अंतर्गत आती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने आप को देह समझता हूं, मैं अपने आप को संग शक्ति समझता हूं, मैं अपने आप को गीता के अनुसार क्षेत्र समझता हूं। क्योंकि यहां महाराज जी एक बात लिख रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वो कहते हैं कि इन अवगुणों को बुद्धि स्वीकार करके नित ही संकट में भयभीत रहती है। अवगुणों को स्वीकार करने का मतलब यहां पे क्या है कि जिन पांच तत्वों से ये देह और इस संसार का निर्माण हुआ है, इसको पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कहते हैं, इस देह को ये बुद्धि अपना स्वरूप समझती है। इसीलिए इस जीव का जो जीवन है वो सांसारिक जीवन बन जाता है, क्योंकि देह और संसार ये एक ही चीज है, इन दोनों में कोई भेद नहीं। देह करके संसार है, और इसका प्रमाण सत्पुरुष कहते हैं कि स्वप्न जब देखते हो तो वहां पर तुम्हारी नई देह और नया संसार एक साथ पैदा होते हैं या अलग अलग पैदा होते हैं? दोनों एक साथ पैदा होते हैं। जब जीव को मां के गर्भ में देह प्रदान की जाती है और वो देह जब संसार में आती है तो देह और संसार एक साथ है ना जीव के लिए, या अलग अलग है? तो जो जीव है उसी को महाराज जी यहां बुद्धि कह रहे हैं। देखिए ये जो बुद्धि है ये गहरे मोह में है, गहरे अज्ञान में है। किस अज्ञान में? कि मैं देह हूं, और इसी कारण देह के जो पांच विकार हैं, प्रकृति के जो ये पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जीव के विकार बन जाते हैं अज्ञानता के कारण। जबकि भगवान कृष्ण साफ कह रहे हैं कि जो जीव है वो मैं स्वयं हूं, या जीव और मैं एक ही है। इसका मतलब केवल अज्ञानता के कारण मैं संसार में इतने कष्ट भोगता हूं, मृत्यु का बार बार सामना करता हूं, और इस विज्ञान को सीखने की कोशिश नहीं करता जो ये गुरु सिखाना चाह रहा है, या गीता जो सिखाना चाह रही है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि तुच्छ समय के अंदर ही शरीर की नाश को प्राप्त होती है, कौन? ये बुद्धि यानी मैं, और इस संसार से निराश ही जाती है। मेरी मृत्यु नहीं होती, इसका मतलब मृत्यु देह की ही होती है। मेरी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन पूरी जिंदगी मैं क्लेश लेकर जीता हूं, और देह के अंत समय भी क्लेश लेकर ही संसार से विदा होता हूं। कई बार हमारी बात समझ में नहीं आती कि बार बार सत्पुरुष ये क्यों कहते हैं, गीता भी ये क्यों कहती है कि जो जीवात्मा है यानी जो बुद्धि है, जो जानने वाली सत्ता है इस देह के अंदर, वो और ईश्वर एक ही है। इसके लिए उपनिषद में एक उदाहरण आता है समझने के लिए। वो कहते हैं जो इन देह के अंदर जीव है, जिसको महाराज जी यहां बुद्धि करके कह रहे हैं, जो जानने वाली चीज, जानने वाली जो चीज होती है उसमें होश होता है, और होश वाली चीज पूरी सृष्टि में एक ही सत्ता है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर केवल जानता है और सारी चीजें जो है वो प्रकृति रूप में है, वो जानती नहीं। तो इसका एक उदाहरण आता है कि एक तो ईश्वर जानने वाला हो गया, एक मैं जानने वाला हो गया, और इतने सारे जानने वाले हो गए। जब इतने सारे जानने वाले हैं तो मैं और ईश्वर एक कैसे हो गए? तो वहां उदाहरण आता है कि जिस प्रकार आकाश में एक सूर्य चमकता है, लेकिन यदि आंगन में 100 बर्तन रखे हों और उनके अंदर पानी भरा हो, तो आप सब में एक चीज देखेंगे कि हर पात्र में सूर्य चमक रहा है, हर पात्र में सूर्य चमक रहा है। और यदि उस पात्र का पानी खाली कर दिया जाए तो क्या होगा? जो सूर्य का अंश उसमें चमक रहा था वो गायब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वो कहते हैं वो गायब नहीं हुआ, वो जहां से आया था वहीं वापस लौट गया है। जो किरण सूर्य से आई थी वो सूर्य में वापस लौट गई। इसका मतलब ये हुआ, ये जो पानी है इसी को प्रकृति कहते हैं, इसी को माया कहते हैं। माया के कारण ये जीव बंधन में है, लेकिन वास्तव में वो ईश्वर है। इसीलिए कहते हैं जिस समय ये पानी अर्थात वासना रूपी जल मेरे अंदर से सूख जाता है, उसी वक्त मैं सूर्य बन जाता हूं, ईश्वर बन जाता हूं। तो जीव कभी भी सूर्य से अलग था ही नहीं, जीव की अपनी कोई सत्ता कभी थी ही नहीं। जिस प्रकार जल के अंदर वो सूर्य जब चमक रहा है, तो क्या वो जल के अंदर नया प्रकाश पैदा हुआ है? हम सब जानते हैं जल के अंदर कोई प्रकाश पैदा नहीं हुआ, वो सूर्य का ही प्रकाश है। किसी क्षण भी वो सूर्य से अलग नहीं हुआ, उसका अस्तित्व सूर्य के बिना है ही नहीं, इसीलिए उसको सूर्य ही कहते हैं। इसीलिए जीव के लिए भी जो दुखी है, देखिए ना, जल यदि हिलेगा तो उसके अंदर का जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का अक्ष है, वो भी हिलेगा। तो उसी प्रकार जब इस देह की मृत्यु होती है, देह जब ये रोगी होती है, तो जीव हिल जाता है, जीव के अंदर भी दुख पैदा होता है, जीव भी समझ लेता है कि मेरी मौत होने वाली है, जबकि जीव की मौत है ही नहीं। तो परिवर्तन पानी के अंतर्गत है, परिवर्तन प्रकृति के अंतर्गत है, लेकिन बुद्धि क्योंकि उस स्वरूप को स्वीकार करे हुई है कि ये मेरा स्वरूप है, इसी गलती के कारण वो कह रहे हैं कि अब देखिए फिर सुनिए, संग शक्ति यानी तत्वों के विकारों से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि महा अवगुणों को बुद्धि स्वीकार करके नित ही संकट में भयभीत रहती है। तो मैं इस चीज को स्वीकार कर लेता हूं कि मैं देह हूं, मैं इस चीज को स्वीकार कर लेता हूं कि मेरे अंदर काम पैदा हो रहा है, मेरे अंदर क्रोध पैदा हो रहा है, मेरे अंदर लोभ पैदा हो रहा है, और उसके कारण उन विकारों के कारण मैं कितना परेशान रहता हूं, दुनिया में कितने बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करता हूं, और इतना कीमती ये मानव देह जो मुझको मिली थी ईश्वर प्राप्ति के लिए, इस अज्ञानता को दूर करने के लिए मैं लक्ष्य बनाकर इस अज्ञानता को और गहरा करके इस देह का मौत के समय त्याग कर देता। तो अब बताइए, जितने आपने ये संस्कार बनाए वासनाओं की इच्छाओं की पूर्ति करने के द्वारा, उसके लिए जो मैंने कर्म किए, इसके द्वारा मेरे ही मन के अंतर्गत जो संस्कार बने, जो बीज नए तैयार हुए, अब उस संस्कार के अनुसार, उस बीज के अनुसार मुझको नई देह मिलेगी, नया खेत मिलेगा, उसमें ये जो मेरे संस्कार रूपी बीज हैं, ये वहां अंकुरित होंगे। जैसा बीज तैयार किया है वैसी फसल वहां पर तैयार होगी। यदि जहरीले बीज मैंने तैयार किए हैं, पाप के बीज तैयार किए हैं, तो फसल भी वहां मुझको पाप की ही काटने को मिलेगी, वहां मुझको पापी ही बनना पड़ेगा, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। इसलिए देखा होगा कोई जन्म से ही राक्षस पैदा होता है और कोई जन्म से ही संत पैदा होता है। तो राम जन्म से ही क्या थे और रावण जन्म से ही क्या थे? तो चाहे जितना भी हम इतिहास उठा के देख लें, अर्जुन पैदा हो रहा है, उधर दुर्योधन पैदा हो रहा है, उधर कंस पैदा हो रहा है, उधर कृष्ण पैदा हो रहे हैं। तो शरीर की पैदाइश, इस खेत की जो पैदाइश है, इसमें जो बीज अंकुरित हो रहा है, वो संस्कार रूपी बीज अंकुरित हो रहा है। तो ये जो संस्कार हैं, ये बुद्धि के साथ मन के रूप में संग चले जाते हैं और नई देह उसकी तैयार होती है। उस देह में यही फसल वो काटता है जो इसने इस जन्म में हुई थी। इसलिए कहते हैं अगले वचन में महाराज जी तूने करना क्या था, वो कहते हैं कि असंग शक्ति यानी एक आत्मा को अनुभव करने से बुद्धि निष्कामता सतवाद निर्मानता उदासीनता निःचलता और पर उपकार आदि महागुणों को प्राप्त होगी। जो उस असंग शक्ति यानी जिसको ईश्वर कहते हैं या जिसको ईश्वर शक्ति कहते हैं, इस देह के अंदर मौजूद है, इस जिस्म के अंदर जो जान है वो असंग शक्ति है। क्योंकि देह को जला दोगे तो जो असंग शक्ति है, जो जान है, वो नहीं जलती। ये जीवात्मा नहीं जलती, वो परमात्मा नहीं जलता। परमात्मा जीवात्मा एक ही है। अंतर दोनों में क्या है कि ये जो जीव है ये अज्ञानता के कारण ये अपने आप को इसने माया से जोड़ दिया है, देह से जोड़ दिया है, इसलिए प्रकृति के जो अवगुण है वो इस जीव के अवगुण बन गए। अब गुरु कौन है? गुरु असंग शक्ति है, वो ब्रह्म है। इसलिए महाजी कह रहे हैं सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाठ हुआ। कौन सी आज्ञा है? यही समता विलास जो ग्रंथ है, ये आज्ञा है गुरु। तूने इस सत विचार पर अपना जीवन लगाना था, तू इसको पढ़ने की जरूरत तक नहीं समझता। कहता ये तो किताब है, ज्यादा पढ़ के क्या होगा, मैं तो सिमरन कर लेता हूं, झूठ बोलता नहीं हूं, पाप कोई करता नहीं हूं, बच्चे पाल लेता हूं, सब ठीक चल रहा। अरे मूर्ख, तुझे पता ही नहीं तू कितनी गलतियां कर रहा है। जब तक ये तत्व ज्ञान तेरी बुद्धि में हर समय बना रहने का मतलब इस तत्व ज्ञान के अनुसार तेरी बुद्धि हर वक्त होश में ना रहे, तब तक तुझको इन शास्त्रों पर गहरा मनन करने की रोज जरूरत है। ये पढ़ाई लिखाई किताबों की पढ़ाई नहीं है ये, क्योंकि तेरी बुद्धि संसार में रात दिन अज्ञानता के हालात में विचार करने की शिकार है। तू अज्ञानी बना हुआ 24 घंटे व्यतीत करता है। तेरी बुद्धि को होश में आने के लिए केवल ये सतविचार है जो तुझको खड़ा रखता है, अर्थात ईश्वर के साथ जोड़े रखता है। अंदर से ईश्वर के साथ तो पता नहीं कौन से जन्म में जुड़ेगा तू। तो इसीलिए केवल कह देना कि तत्व ज्ञान है, ये हमारी समझ से बाहर की बात है, ये बातें करने से काम नहीं बनता। स्वार्थ की विद्या तो मैं खूब पढ़ लेता हूं, पढ़ा लेता हूं, स्वार्थ के लिए जीवन भी मैं पूरा बड़े बारीकी से उसके लिए व्यवस्था करता हूं और समझने की कोशिश करता हूं, उसको व्यतीत करता हूं। तो स्वार्थ में तो मैं बड़ा परिपक्व हूं, बड़ा होशियार हूं। जो मेरी मौत है, जो मेरी जिंदगी की बर्बादी है, उसमें मैं होशियार हूं, और जहां होशियारी चाहिए वहां मूर्ख हूं। इसलिए गुरु लिखकर दे रहा है कि यह ही जीवन अंधकारमयी पशु समान है। तो मेरा जो सांसारिक जीवन है, जिसको मैं अपने आप को देह समझकर व्यतीत कर रहा हूं, ये अंधकारमयी पशु समान जीवन है। इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या अच्छा है? और कृष्ण गीता में साफ कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञम चा अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, और सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे को ही जान। कहां खड़ा हुआ हूं मैं? ईश्वर हूं भाई, मैं खुद ईश्वर हूं, क्या बना हुआ हूं? ये मेरी हालत है। तो बताइए, यदि मैं इस ज्ञान को बार बार पढ़कर इसके अनुसार मनन करने की आदत ना बनाऊं, ये मैंने आदत बनानी है, तब तक ये विचार मेरी बुद्धि में हर वक्त टिका नहीं रहेगा। और जब ये विचार आपकी बुद्धि में टिकेगा, उस समय आप जो भी संसारिक कार्य करोगे जो कुछ भी इच्छा पूर्ति अपनी संसार में करोगे, आपके अंदर होश बना रहेगा कि मैं पांच विकार के अंतर्गत अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। मैं जीव हूं या जीवात्मा, और जीवात्मा ईश्वर एक ही चीज है। इसलिए सारी साधना क्या है आपकी, आप विचार करके तो देखो आपकी साधना ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या है। सबसे पहले आप को यह कहा जाता है कि ये जो सत विचार है इसके अनुसार आप अपनी बुद्धि के निर्णय को बदलो। अर्थात जैसा शास्त्र कह रहा है, जैसा ईश्वर के वचन हमको सिखाना चाह रहे हैं, वो सीखकर मैं क्या हूं पहले मैं ये सीखूं, और मेरा बंधन क्या है फिर मैं ये सीखूं, और फिर उस बंधन से मुक्ति कैसे हो मैं ये सीखूं। बंधन से मुक्ति क्यों? क्योंकि बंधन से मुक्ति ही मुझको ईश्वर से मिला देती है, या यूं कहें कि मुझको ईश्वर बना देती है, जिसके बाद दुख नाम की चीज, क्लेश नाम की चीज, अज्ञानता नाम की चीज कोई रहती नहीं। वहां केवल आनंद है, वहां केवल समाधि है, आनंद के अलावा वहां कोई दूसरी चीज है ही नहीं। इसीलिए सब कुछ कहते हैं कि प्रभु के सिमरन कार ने ये दुर्लभ जीवन पाया, ये दुर्लभ जन्म है भाई। और संसारी लोगों की नकल करके जो व्यतीत करता हूं जीवन, ये पशु जीवन। संसारियों की नकल करके जो मैं जीवन व्यतीत करता हूं ये पशु जीवन है। गुरु की नकल करके जो मैं आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता हूं ये मानव देह का कर्म है। यह है मानव देह का। तो कितना अहंकारी जीव हूं, अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी कमाई करके मैं कितना अहंकारी हो जाता हूं, और यह भूल जाता हूं ये अहंकार क्या है। ये देह के प्रति तेरा जो मोह है ये और गहरा हो रहा है, तेरी ये अज्ञानता और गहरी हो रही है कि मैं देह हूं। इसीलिए जब तक इस तत्व ज्ञान के अनुसार आप विचार करना शुरू नहीं करोगे, ये एक वक्त का विचार नहीं है जो सत्संग सुन लिया हो गया फिर वैसे ही संसार में लग गए, ये 24 घंटे का विचार है। इसीलिए सतपुरुष ने, महाराज जी ने भगत जी को बोला था बनारसी कम से कम 2 घंटे स्वाध्याय को तू रोज किया कर, लिख कर दिया था महाराज जी ने भगत जी, क्योंकि वो जानते थे उसकी बुद्धि कितनी कमजोर है। 16 वर्ष महाराज जी के संग रहकर भी जो भगत जी के द्वारा गलतियां होती थी, जो उनकी सोच बनी हुई थी, उसको गुरु जानता था। हम तो इसकी जरूरत ही नहीं समझते, हमको तो 2 घंटे, मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं, 15 मिनट रोज पढ़ लू तभी मैं बहुत पढ़ जाऊंगा, मैं ऐसा सोचता। ये किताबों की पढ़ाई नहीं है, ये सत विचार का मनन है। इसको कहते हैं सत विचार का मनन। आप पढ़ोगे तो 2 सेंटेंस, लेकिन विचार उस पर घंटों चलता है। मैं अपनी बुद्धि को तोलता हूं कि मेरी बुद्धि कहां खड़ी हुई है, अब ये गुरु वचन क्या कह रहा है, ये सत विचार है, या ये कह लो कि गुरु वचन है या शास्त्र वचन है। ये मेरा निर्णय और शास्त्र के वचन का जो निर्णय है इसमें कितना बड़ा अंतर है। मैं खुद ईश्वर हूं लेकिन क्या मेरी दुर्दशा है, कितना परेशान रहता हूं। महाराज जी तो परेशान नहीं रहते थे। देखो गुरु कौन है, जो जीव अज्ञानता को छोड़कर ईश्वर बन गया अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो गया उसको गुरु कहते हैं। तो इसलिए महाराज जी कहते थे गुरु की एक ही पहचान है, गुरु के अंदर किसी भी प्रकार की वासना या किसी प्रकार की इच्छा पैदा हो ही नहीं सकती, यही गुरु की पहचान। मुझको पता है मेरे अंदर कितनी प्रकार की इच्छाएं पैदा होती, वहीं से पता रहता है मैं कितने बड़े बंधन में जी रहा हूं, कितने अज्ञानता में जी रहा हूं। चाहे वो इच्छाएं मेरे अपने शरीर के बारे में हो, चाहे वो इच्छाएं मेरी शरीर के, मेरे बच्चों के शरीर के बारे में हो, चाहे वो इच्छाएं मेरे घर के बारे में हो, चाहे वो इच्छाएं समाज के बारे में हो, वो सारा इच्छा चक्र मेरा है, वो मेरी बुद्धि के अंदर स्थित है, और यही बंधन है, यही माया है। तो इसीलिए आपको एक रास्ते पर गुरु लगाता है कि सबसे पहले आप बाहर की जो आपने इच्छाएं पाल रखी हैं, बाहर का जीवन जो फैला रखा है, इसको पहले सिकोड़ो। इसमें कम से कम आपका वक्त खर्च हो, ऐसी व्यवस्था बनाओ। इसका मतलब हुआ कि वो कहते हैं जरूरत पर आ जाओ, वासना का जीवन त्याग करो। उसके बाद वो कहते हैं, या इसके साथ साथ ही कहते हैं कि अंतर्यामी ईश्वर की याद के लिए दो वक्त जरूर निर्धारित करो, जिसके लिए माज कहते हैं कम से कम एक घंटा सुबह, एक घंटे सायंकाल जरूर सिमरन करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं वो आत्मा हूं, मैं वो जो है कहते हैं कि असंग शक्ति हूं या क्षेत्रज्ञ हूं जो इस देह के अंदर मौजूद है। तो मैंने अपने उस स्वरूप को याद करना है, उसको उस ईश्वर को मैंने निरंतर याद करना है, क्योंकि वही मैंने पहुंचना है। तब आपको पता लगता है कि मेरे मन के अंदर कैसे कैसे संस्कार बैठे हुए हैं कि ईश्वर की याद जो सबसे इंपॉर्टेंट कर्म है उसको करने ही नहीं देते। तब आपको आवश्यकता महसूस होती है कि इस मन की मैं सफाई करूं। तो मन की सफाई दो ही तरीके से होती है, सत्कर्मों को करके, इसको हम निष्काम सेवा या निष्काम कर्म कहते हैं, और सत वचनों का स्वाध्याय करके, क्योंकि उससे सत विचार आपके मन के अंदर घूमा करते हैं, असत विचार की जगह सत विचार मन के अंदर घूमने लगते हैं। तो वो जो सत विचार हैं वो आपको सिमरन में सहायता करते हैं, तब जाकर वो जो अंतर्यामी ईश्वर है उसका क्षेत्र खुलता है, अर्थात उसके क्षेत्र में आप प्रवेश करते हैं। उस क्षेत्र का नाम ही कुंडलिनी जागरण या नाद का जागरण। उस समय आपको बोध होता है ये शास्त्र ऐसे ही नहीं लिखे हुए हैं, मैंने जब इनकी आज्ञा मानी और इसके अनुसार चलना शुरू किया तब मुझको अंदर अनुभव हो रहा है कि हां प्रभु मौजूद, मैं उनके नजदीक आ रहा हूं। और यही चीज आपको आगे चलकर समाधि में ले जाती है, जहां ईश्वर के साथ आप कुछ समय के लिए एक ही हो जाते हो। और वहां से जब वापस आते हो संसार में, तब आपको पता लगता है कि ये सारी बातें तो सत्य हैं। समाधि के अंदर जिसका बोध था उसका नाम ही क्षेत्रज्ञ है, उसका नाम ही ईश्वर है। जहां संसार नहीं है, संसार का दुख भी नहीं है, वहां देह भी नहीं है, जागने के बाद पता लगता है इसको माया क्यों कहा गया, ये पांच विकार इसमें से कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे जीव इसमें फंसा हुआ है, ये सारा भेद इसके आगे खुल जाता है। ऐसा जीव फिर कहां समाधि का त्याग करना चाहता है, वो 24 घंटे सोता तक नहीं है। प्रभु उसके ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि उसकी नींद भी गायब हो जाती है, भूख प्यास निद्रा के बंधन में वो नहीं रहता। तो हर वक्त वो प्रभु की याद, प्रभु के संग रहता है और मरने से पहले ही उस मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है जिसको हम ईश्वर प्राप्ति कहते हैं। तो इसीलिए जो गुरु क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के रूप में और संग शक्ति असंग शक्ति के रूप में जो ये वर्णन कर रहा है विज्ञान का, ये विज्ञान हमको समझना चाहिए बार बार अध्ययन के द्वारा, ताकि ये विचार हमारे अंदर बने रहें, हर वक्त बने रहें, और इसके अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम।